તારીખ 7/9/1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 504
569 ચાલતા થોડા ચલા હૈ आगे और भी विषय लेते हैं। अन्य परिणाम में जितनी तादात्म वृत्ति है उतना जीव से मोक्ष दूर है। आत्मा को छोड़ करके जितने भी परिणाम हैं वो अन्य परिणाम है ऐसे, और आत्मा को छोड़ करके जो भी परिणाम है वो कर्म के उदय में जुड़ने से होने वाले परिणाम है, इसलिए उनको उदय भाव कहने में आते हैं। ऐसे उदय भाव में जीव तदात्म वृत्ति से अगर परिणमन करता है वो तदात्म वृत्ति का डिग्री होता है, तीव्रता मंदता होती है। तो जितना तीव्र रूप से तादात्म वृत्ति में परिणमता है उतना जीव मोक्ष से दूर जाता है या आत्मकल्याण से दूर जाता है। अन्य पदार्थ के विषय में उदय भाव में जीव जितना रस से तादात्म वृत्ति कम होती है कि रस तीव्र होने से होती है, तो जितना रस से वो लगता है उतना वो अपने मोक्ष से दूर जाता है। तद आत्मवृत्ति, तादात्म वृत्ति में तीन शब्द है, तद मैंने उसमें, तद मैंने उसमें, आत्मवृत्ति आत्मारूप वृत्ति, उसमें आत्मारूप वृत्ति, पर में आत्मारूप वृत्ति, उसको कहते हैं तादात्म वृत्ति। तो जितनी अन्य परिणाम में मैंने उदय भाव में तद रूप से एक रस से जितनी उग्र वृत्ति होती है उतना जीव अधिक दूर जाता है, अपने मोक्ष से वो अधिक दूर जाता है, मैंने उतना बंधता है मोक्ष से दूर जाता है। इसका मतलब क्या है कि उतना ज्यादा बंधन उसको होता है, जितना बंधन तीव्र हो मजबूत हो, बंधन जितना मजबूत हो उतना छूटने का तकलीफ होगा, सीधी बात है। पोतापन और पोतापना में भी उग्रता आती है, तो जितनी उत्तादात्म वृत्ति ऐसा लिया है, जितनी मैंने जितने डिग्री में जितने रस में तो तद्रूपण आता है उतना जीव को तीव्र बंधन होता है और उतना वो बंधन को छूटने में तकलीफ होगा, इसलिए वो मोक्ष से दूर गया ऐसा कहने में आता है। इसलिए ज्ञानियों को ये आज्ञा है मुमुक्षुओं को कि कोई भी उदय हो मंद रस से प्रवृत्ति होना चाहिए और मंद रस से परिणमन होना चाहिए, तीव्र रस से कभी भी होना नहीं चाहिए। तीव्र रस से हो गए तो बंधन तीव्र हो जाएगा, और वो बंधन तीव्र होगा वो छूटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ऐसा लिया है, तो उदय में मंद रस से प्रवेश करना यही ज्ञानी के मार्ग में प्रवेश करने का द्वार है। क्यों? तो ज्ञानी तो मंद रस से परिणमन करते हैं, तो तुमको ज्ञानी के रास्ते में प्रवेश करना है तो तुम भी ऐसा प्रैक्टिस करो,
बंद को परिभ्रमण करो, दुख करो।
हाँ सब ऐसी बात है, इतना रस तीव्र इतना दुख भी तीव्र, और बंद ज्यादा तो परिभ्रमण भी ज्यादा। ठीक नहीं है, ठीक है, कहीं भी बाह्य प्रसंग में उल्लास हुआ और रस के परिणाम हुआ और तदात्म वृत्ति से उल्लास हुआ तो उल्लास में भी उल्लास में तादात्म वृत्ति हुई, वो ठीक नहीं है। परिणाम आश्रित परिणमन मत करो कहते थे वो, तो परिणाम आश्रित परिणमन करने लायक नहीं है, स्वरूप आश्रित परिणमन करो, लेकिन एक समय के परिणाम आश्रित परिणाम नहीं करना चाहिए। यदि कोई आत्मयोग बने तो इस मनुष्य भाव का मूल्य किसी तरह से नहीं हो सकता। देखो कितना प्रोत्साहन दिया है, प्रेरणा दिया है। यदि कोई आत्मयोग बने, वो तथारूप योग का है ना, वो तथारूप योग का दूसरा नाम है आत्मयोग, ये आत्मकल्याण का योग बन गया, तो आत्मयोग कहा, आत्मकल्याण का योग को संक्षेप में क्या कहा, आत्मयोग। तो ऐसा कोई आत्मयोग बना मनुष्य भाव में तो ये मनुष्य भाव की कीमत बहुत हो गई, वरना तो कई लोग जन्मते हैं, मनुष्य होते हैं और मर जाते हैं, खाते हैं पीते हैं और मर जाते हैं। क्या किया कि भव चक्र का एक भी आटा कम किया
नहीं। सत्पुरुष का जो आत्मयोग,
सत्पुरुष का योग और अपने सत्पुरुष की आवश्यकता लगी, दो बात साथ में। सत्पुरुष का योग तो अनंत बार हुआ, लेकिन वो योग अयोग रूप रहा, विषय कषाय सहित जे रया मतीना योग, परिणाम ने विषमता तेने योग अयोग, अयोग सत्पुरुष का योग बना वो भी अयोग हो गया, क्योंकि विषम परिणाम चले, उल्टा परिणाम चले, सीधा परिणाम नहीं चले, आत्मकल्याण के विषय में परिणाम ही नहीं चला, उल्टा उल्टा परिणाम चला।
एक सत्पुरुष का योग होने के साथ एक सत्पुरुष का योग पुरुषार्थ आदि
ने, हाँ जो पुरुषार्थ आदि ने है पुण्ययोग तो वहां भी है, लेकिन जो पुरुषार्थ से मिला उसमें काम हो जाएगा, उसको आत्मयोग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आत्मयोग। कि यदि मनुष्य इस मनुष्य भाव में, इस मैंने मैंने वर्तमान मनुष्य भाव में कोई ऐसा आत्मयोग हो गया तो मनुष्य भाव का मूल्य किसी तरह से नहीं हो सकता। किसमें वो मनुष्य भाव का मूल्यांकन करना, किस चीज के बराबरी में करना, कोई चीज ऐसी नहीं है। ये मनुष्य भाव में अनंत भाव का काम कर लिया, उसने आत्मयोग बना तो अनंत भाव का काम कर लिया।
तो सत्पुरुष का योग और सत्पुरुष की जरूरत, दो चीज
हो, जरूरत महसूस हो और योग मिले तो आत्मयोग बन जाएगा वो। और ऐसा आत्मयोग इस मनुष्य भाव में हुआ काम बहुत हो जाएगा, अल्प समय में बहुत काम होगा, इतना बड़ा फायदा का वो मौका है।
तो जितनी सत्पुरुष की जरूरत उतनी पात्रता नहीं, जितनी सत्पुरुष की जरूरत उतनी पात्रता
नहीं, पात्रता जिसके सत्पुरुष, जितने सत्पुरुष की जरूरत उतनी ही पात्रता। जरूरत कितने जीव महसूस करता है इस पर उसकी पात्रता का आंक है, ऐसी बात है। प्राय मनुष्य देह बिना आत्मयोग नहीं बनता, बहुभाग सत्पुरुष का योग मनुष्य भव बिना बहुभाग तो नहीं बनता। ऐसा जानकर अत्यंत निश्चय करके इस देह में आत्मयोग उत्पन्न करना योग्य है। अगर आत्मयोग नहीं बना हो तो मनुष्य भाव के बिना, मनुष्य देह के बिना ये नहीं बनता, ऐसा जानकर ये मनुष्य भाव में है अत्यंत निश्चय करके, बलवान निश्चय करके वर्तमान भाव में आत्मयोग उत्पन्न कर लेना चाहिए। यानी सत्पुरुष की वांछा या जरूरत तीव्र रूप से लगनी चाहिए। ये वरना ये मनुष्य भाव चला जाएगा तो बाकी की तीन गति में ऐसा आत्मयोग उत्पन्न होने की संभावना नहीं बत है। कभी हो अलग बात है, लेकिन इधर चुप गया फिर
वहां क्या करेगा,
क्या करेगा? जब शक्ति है तब शक्ति का उपयोग नहीं हुआ तो फिर शक्ति चली गई क्या करेगा, तो कोई उपयोग फिर तो होगा ही नहीं।
काम तो भविष्य में होने वाला नहीं, वर्तमान में ही होने वाला
है। वर्तमान में होने वाला है और वर्तमान में सब अवसर आ चुका है, पूरा मौका मिल रहा है, फिर क्यों उधारी का मुनाफे के धंधे में उधारी का व्यापार क्यों करे? हाँ, नहीं करना चाहिए, कोई नहीं करेगा। विचार की निर्मलता से यदि यह जीव अन्य परिचय से पीछे हटे तो सहज में अभी ही उसे आत्मयोग प्रकट हो जाए। ऊपर वो स्थापित किया कि आत्मयोग उत्पन्न करना चाहिए, तो कैसा कर क्या करे तो आत्मयोग उत्पन्न होगा, ये प्रश्न आएगा, उसका उत्तर आएगा, आया है कि विचार की निर्मलता के निर्मलता से, ये पहली बात लिया है मैंने। विचार की निर्मलता माने क्या? प्रमाणिक रूप से ईमानदारी से अपने को अपने आत्म कल्याण कर लेना है, कोई झंझट में गए बिना। हमको एक ही काम है कि हमारा आत्म कल्याण करना, बस। जीव अन्य परिचय से पीछे हटे, मैंने सब झंझट छोड़ दे, अन्य परिचय से पीछे हटे का मतलब क्या है कि सब झंझट मेरा आत्म कल्याण के सिवा, मेरा प्रयोजन के सिवा मुझे कोई बात का अवकाश नहीं है, न कोई बात करनी है, न कोई बात सुननी है, न कोई बात में ध्यान देना है, न लक्ष्य देना है। एक ही काम के लिए हम, हमारे पास दूसरा कोई काम है ही
नहीं।
काम एक आत्मार्थ नू बीजो नहीं मन रोग, एक आत्मार्थ हो हमारा मन का रोग है, दूसरा कोई बात नहीं। हमारे मन में दूसरी बात ही आने का, प्रवेश करने का अवकाश ही नहीं है। इस प्रकार से जीव अन्य परिचय से पीछे हटे तो सहज में, देखो ये कुदरत की देन है कि सहज में और अभी ही, देर भी नहीं लगेगी कहते हैं, ठीक, सहज में अभी ही उसे आत्मयोग प्रकट हो जाए, आत्मयोग प्रकट हो जाएगा, पात्रता आएगी तो उनको बाहर में भी योग सत्पुरुष का अवश्य अवश्य मिल ही जाएगा। सब खास करके क्या है कि जीव आत्म कल्याण के विषय को छोड़कर किसी से भी दूसरे विषय में रस लेता है या माथा लगाता है वो सब अन्य परिचय है। क्या जरूरत है? कोई जरूरत
नहीं है।
लेकिन पहले अपनी प्रभाव ना करे या पहले दूसरे के करे
है? अपनी पहले कर।
देखो वहां आया है कि नहीं, पीछे हाथ नोंद में जिन प्रतिमा था, परम कारुण्य वृत्ति, ऐसा करके लिया कि नहीं?
जिन प्रतिमा था, जिन प्रतिमा,
हाँ, वो अपने लिए लिखा है, प्रभावना का विकल्प आया तो ऐसा लिखा। हाँ, 823 अच्छा, और अभ्यंतर परिणाम अवलोकन पहला या दूसरा? दूसरा, आधार नंबर दूसरे में
नंबर
आधार हाँ, पर अनुग्रह मैंने दूसरे पर मेहरबानी करना, उपकार करना, पर अनुग्रह मैंने दूसरे का उपकार करना, पर अनुग्रह परम कारुण्य वृत्ति की और परम करुणा से दूसरे पर उपकार करना, उसकी अपेक्षा भी एना करता पर प्रथम चैतन्य जिन प्रतिमा हो, चैतन्य जिन प्रतिमा हो, अपने आप को कहते हैं वो आत्मा में अपने लिए लिखा है, ये जीव तू पहला अपने में डिम हो जा, अपने में जिन चैतन्य जिन प्रतिमा हो जा, फिर परोपकार की बात करना और पर को अनुग्रह करने की, परम के ऊपर को करुणा करने की बात करना, ये प्रभावना की बात ऐसी है। स्वयं अपने में अकेला रहना चाहता हो और तब दूसरे मुमुक्षु को ऐसा लगे कि ये किसी से मिलता जुलता नहीं है, मैंने अतड़ा रहता है, किसी से मिक्स नहीं होता है, तो ऐसा विकल्प दूसरों को दूसरे के लिए उठे चले वो बराबर है क्या? तो वो बराबर नहीं है, वो विकल्प बराबर नहीं, किसी को दूसरे के लिए कोई विकल्प करना चाहिए नहीं, अपना चिंता करे, दूसरे की चिंता नहीं करनी चाहिए।
अभी भी
आत्मयोग प्रकट हो, अभी भी आत्मयोग प्रकट हो जाए, देखो सहज में हो जाएगा, आत्मयोग प्रकट हो जाएगा, हाँ तो विचार की निर्मलता
नहीं
है, सीधी बात है, तो आत्मयोग कहां से प्रकट होगा, और विचार की निर्मलता नहीं है तो अन्य परिचय में रह पाएगा, अन्य परिचय से हटेगा नहीं, रह पाएगा। असत प्रसंग और सत्संग प्रसंग का और सत्संग वाला प्रसंग का घिरावा विशेष है, चारों ओर और सत्संग प्रसंग और सत्संग का ही प्रसंग है, उसमें जीव घिरा हुआ है, ये परिस्थिति आजकल है इस जमाने में। और यह जीव उससे अनादि काल का हीन सत्व हुआ होने से, इन सत्व मैंने इन पुरुषार्थ वाला हो गया है, असत प्रसंग में रुचि रख करके, रुचि कर करके खुद ही पुरुषार्थहीन तो हो गया है, अपना पुरुषार्थ तो चलता नहीं है, एक तो अनादिकाल का हीन सत्व हुआ होने से उससे अवकाश प्राप्त करने के लिए, किससे ये हीन सत्व हुआ है इससे अवकाश प्राप्त करने के लिए, कुछ जगह करने के लिए, यानी उसको कम करने के लिए अथवा उसकी निवृत्ति करने के लिए या पुरुषार्थ से जगाने के लिए, यथासंभव सत्संग का आश्रय करे तो किसी तरह पुरुषार्थ योग्य होकर विचार दशा को प्राप्त करे, ये रास्ता बता दिया कि जीव को यथासंभव सत्संग का आश्रय करना चाहिए, हो सके इतना, यथासंभव मैंने हो सके उतना सत्संग का आश्रय करे, सत्संग करे ऐसा नहीं किया, सत्संग का आश्रय करे। तो किसी तरह पुरुषार्थ योग्य हो जाएगा, पुरुषार्थ उत्पन्न हो जाएगा, पुरुषार्थ आने में या करने में देर नहीं लगेगी, लेकिन सत्संग का आश्रय करे तब, तो सत्संग का आश्रय से जीव में इतना ज्यादा या इतना बड़ा फर्क हो जाता है, चमत्कारिक बात हो जाती है। कोई जीव कैसा परिणाम उसे हिंसत्व हो गया हो, खराब परिणाम से एकदम ताकत आ जाएगी। जितना ज्यादा हो सके उतना बराबर
होना
है। तो ट्रांसलेशन में फर्क तो पड़ेगा, एग्जैक्ट आएगा नहीं तो। तो किसी तरह पुरुषार्थ योग्य होगा, पुरुषार्थ से लायक बनेगा। और विचार दशा में आत्मकल्याण के विचार के लिए विचार वो प्राप्त करेगा। सत्संग में आएगा तो आत्मकल्याण का विचार उसको चलेगा। देखो बात तो अरस्परस है। किसी को आत्मकल्याण का विचार आता है और सत्संग का आश्रय करता है, किसी को ऐसा विचार आए बिना सत्संग में ऐसा विचार जागृत हो जाता है। सत्संग में रहते रहते ही विचार की जागृति हो जाती है। दोनों प्रकार संभव है।
विचार की निर्मलता
वापस
घूमना ये तो
अनिवार्य है। वो तो जरूरी है, कोई भी परिस्थिति में विचार की निर्मलता से अन्य परिचय से तो वापिस हटना, पीछे हटना चाहिए ही चाहिए, ये तो जरूरी है।
तभी सत्संग सफल होगा।
हाँ, वरना सत्संग करे और बाहर में यूं का यूं, ये सत्संग का आश्रय उसने नहीं किया है। सत्संग करे और सत्संग का आश्रय करे, इसमें अंतर क्या क्या फर्क है? तो दूसरा तो सत्संग करता है और अन्य परिचय से वो पीछे हटता नहीं है, उतना का उतना अन्य परिचय चालू रखता है। जो भी अपना उदय है उसमें उतना का उतना रस लेता है, जो भी उदय आता है उसमें तीव्र रस लेता है और सत्संग भी करता है। उसने सत्संग का आश्रय नहीं किया। जिसने सत्संग का आश्रय किया वो अन्य परिचय से पीछे हटेगा हटेगा और वही इसका आश्रय है। आज्ञा का अमलीकरण या सत्संग का आश्रय में क्या होगा कि जीव को अपने उदय भाव में रस नहीं आएगा। शुद्धांतकरण से विचार की निर्मलता से अगर सत्संग का आश्रय किया तो उदय भाव में रस आएगा, निरस हो जाएगा। क्योंकि इसका चित्त है वो आत्मकल्याण के पीछे लगा रहेगा, मुझे मेरा आत्मकल्याण कर लेना है, जैसे कैसे भी ये देह का समाप्त आयु होए उसके पहले मुझे मेरा काम कर लेना है। ये बात उसको मस्तिष्क में से निकलेगी नहीं, नहीं, नहीं। ये हो जाएगा।
धन संपत्ति आदि
दर्शन ही नहीं किया होता है। जिस प्रकार अब आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से इस संसार की अनित्यता असारता अत्यंत रूप से बाधित हो, उस प्रकार से आत्मविचार उत्पन्न होता है। देखो ये रास्ता बताया कि जिस प्रकार से इस संसार की अनित्यता अत्यंत रूप से भाषित हो, अनित्यता थोड़ी भाषित नहीं हो, बहुत बहुत भाषित हो। ये चार दिन की भी चांदनी नहीं है, इसमें रातना नाचना कहां तक उचित है? हाँ, तो कोई उचित
नहीं है,
नहीं
है।
हाँ, लगना चाहिए अनित्यता महसूस होना, ये लगना भाषित होना मैंने लगना चाहिए, और असारता भी लगनी चाहिए। अनित्य भी है और असार भी है। असार भी मैंने कहीं से सुख तो आता नहीं है, कहीं से भी सुख आता नहीं है, तो उसमें क्या सार रहा? जो असार लगे तो रस आएगा कहां से? सुख बुद्धि से रस आता है जीव में। जीव को रस क्यों आता है उदय में? सुख बुद्धि के कारण से रस आता है। असार लगे तो रस आवे ही नहीं कि अनित्य है असार है, इसमें क्या रस लेने की चीज है? ऐसा अत्यंत लगे, थोड़ा बहुत नहीं लगे, अत्यंत तीव्र रूप से लगे तो आत्मकल्याण का विचार सही रूप में उत्पन्न होता है। ये अंदर से आत्मकल्याण का विचार हुआ। ऊपर ऊपर से होगा यदि आत्मकल्याण का विचार ऊपर से होगा तो संसार असार नहीं लगेगा, संसार के प्रसंग असार नहीं लगेगा, रस आएगा और अनित्यता भाषित नहीं होगी। जैसे मैं यहां से मरने वाला हूं ही नहीं ऐसा अनुभव करके वो काम परिणाम को इतना बग बिगाड़ेगा, इतना बिगाड़ेगा कि जैसे मैं मरने वाला हूं ही नहीं, तो अनित्य है इसका भान भूलता है, अनित्यता का भान छूट जाता है और परिणाम बहुत बिगाड़ देता है।
भविष्य के प्लानिंग करता है अभी बैठे बैठे, कोई बातचीत नहीं होता है,
भविष्य के प्लानिंग करता है नहीं, वो भविष्य का जो प्लानिंग करता है उसको क्षणवर्तीपना मालूम नहीं है। उनको तो ऐसा लगता है कि मैं वहां तक रहने वाला हूं। और देखो ये ज्योतिष में कैसी गड़बड़ होती है। एक दो दिन पहले ज्योतिष की चर्चा चली थी शाम के घूमने में, शाम को बहुत बार आयुष का पता ज्योतिष में कम चलता है, वर्तमान में जो ज्योतिष लोग है नहीं जानते तो क्या उसका लगता लिखता है ना वो जन्माक्षर करके टिप्पणी बनाते हैं ना कुंडली कुंडली, तो आप 55 वर्ष की आयु में वो काम करेंगे, 60 वर्ष की आयु में आपका वो काम होगा और 70 साल की उम्र में ऐसा होगा और 75 साल की उम्र में ऐसा होगा और भाई साहब 42 में चला जाता है। ऐसा हमने देखा, हमारे रिश्तेदार थे 42 साल की उम्र में आयु पूर्ण हो गया। फिर क्या हुआ कि इसके घर में इसके फिर तो कपड़े वपड़े का कबाड़ में सब होता है ना, इनकी चीज वस्तु है सब फिर तो व्यवस्थित करना पड़ता है, जहाँ तक तो वो जिंदा है वहां तक तो वो संभालता है, मर जाने के बाद तो घर वाले ही नहीं, तो उसमें से निकली वो कुंडली का पन्ना निकला। तो भाई क्या है, कोई ज्योतिष व्योतिष से लिखवाया है क्या लिखा? तो 42 साल की उम्र में तो आयुष पूरा हो गया, लेकिन 54 साल की उम्र में आपके हाथ से बहुत बढ़िया काम होगा और 62 साल की उम्र में और इतना अच्छा काम होगा और 36 साल की उम्र में ऐसा होगा और 84 साल की उम्र में ऐसा होगा। अरे 42 इसके आधे में तो चला गया। वो क्या है कि उतना लंबा 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 अपना आयुष मान करके आत्मकल्याण के विचार में आता धोखा खा जाता है। इसलिए ज्योतिष के रास्ते में जाना नहीं, कभी भी ज्योतिष के पास नहीं जाना चाहिए, मुमुक्षु को तो नहीं जाना चाहिए वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। सार मैंने हित रूप या सुख रूप, हित रूप या सुख रूप, असार मैंने अहित रूप और दुख रूप, सुख का अभाव रूप, ऐसा प्रकार भाषित हुए अनित्य और असार का, तो आत्मविचार यथार्थ रूप में आत्मकल्याण का विचार। और नित्यता उतना ही रस और उसमें ही सुख बुद्धि, उसमें ही नित्यता, कोई ठिकाना रहेगा नहीं। अब अपने विषय में खुद के विषय में दिख रहे हैं, अब अपने खुद के स्वयं की बात करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रतिपादन है। उतने ऊपर बैठे थे कि ये सब्जेक्ट पर खुद की मास्टरी है, क्या आत्मकल्याण कैसे करना, कैसे होता है, मास्टरी है सब्जेक्ट, उपयोग इतना चलता है, लिख के देते हैं उतना उपयोग चलता है। अब इस उपाधि कार्य से छूटने की विशेष विशेष आरती हुआ करती है, जो स्वयं मुंबई में जिस व्यवसाय में थे उसमें अनेक प्रकार की उपाधि व्यवसाय में होती है वो तो समझाने की जरूरत नहीं है। जो लोग अभी भी व्यवसाय में हैं वो तो कितनी उपाधियां करते हैं वो तो समझाने की जरूरत नहीं है। तो खुद भी इस उपाधि कार्य से छूटने की अपने परिणाम में आर्त परिणाम होते थे, आर्त मैंने आतुरता वाले परिणाम होते थे, बहुत आतुरता वाले परिणाम होते थे। विशेष विशेष मैंने तो मेरे ये व्यवसाय कब छूटे, 28 साल की उम्र है, ये लिखते हैं तब कितनी उम्र है, 27 पूरा हुआ है और 28 साल चल रहा है। आजकल 28 साल का उम्र वाला तो युवान बोला जाता है, वो निवृत्ति व्यवसाय से निवृत्ति का विचार तीव्र होता जाता है। 25 साल से हो तो 24-25 साल से तीव्र हो गया है, और छूटे बिना ये व्यवसाय छूटे बिना जो कुछ भी काल बीतता है, समय बीतता है, वह इस जीव की शिथिलता ही है। ये तो अपनी शिथिलता को महसूस करते हैं, ऐसा लगता है अथवा ऐसा निश्चय रहता है, ऐसा लगता है अथवा ऐसा निश्चय रहता है, खुद को ये लगता है। ज्ञान दशा में है, ये काल जाता है, हमको व्यवसाय में रुकना पड़ता है, हमको पोसाता नहीं, ये तो हमारी शिथिलता है, वरना क्यों नहीं छूटे, छूटना ही चाहिए यहाँ से, ये तो हमारी शिथिलता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है अथवा ऐसा हमारा निश्चय है, ये हमारा निश्चय है, ये हमारी शिथिलता है। एक परचाया है, जो परिभ्रमण की चिंतना लगती हो, यानी कि वेदना लगती हो, और ज्ञानी को ज्ञाना का पालन आज्ञा का ज्ञाना नहीं आज्ञा का पालन करता हो, परंतु इनका भी इनका कभी भी आत्मा का कल्याण करना है ऐसा विचार न आता हो, इनका लक्ष्य केवल परिभ्रमण की चिंतना में आना ऐसा ही हो, लेकिन प्रश्न क्या है, तो प्रश्न नहीं है, हाँ कोई बात स्पष्ट नहीं है, किसका है चिंतन पूछ सकते हो, लिखने में तो कोई खास स्पष्ट बात नहीं है। क्या लिखो थे, हिंदी से आता कोई प्रश्न स्पष्ट नहीं है, ये अपने विषय में खुद लिखते हैं कि हमको ये व्यवसाय में हमारा समय कीमती मनुष्य आयु व्यवसाय के परिणाम में खर्च हो जाए तो हमको बिल्कुल बर्दाश्त होता नहीं है। जनकादि उपाधि में रहते हुए भी आत्म स्वभाव में रहते थे, ऐसे आलम्बन के प्रति कभी भी बुद्धि नहीं जाते। जनक विदेही रामचंद्र जी के ससुर थे और सीता जी के पिताजी थे। तो जनक की पुत्री के हिसाब से सीता जी का दूसरा नाम जानकी भी था, उस जनक के पिताजी के नाम से पुत्री को बोला जाता था। तो ये बहुत ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे और मशहूर प्रसिद्ध आत्मज्ञानी थे और राजकाज में अच्छी तरह निपुणता से चलाते थे। फिर भी वो अलिप्त बहुत रहते थे, उतने अलिप्त रहते थे कि अपना देह की भी वो दरकार करते नहीं थे, या देह है कि नहीं है उसका भी उनको ख्याल नहीं रहता था। तो जैसे सिद्ध भगवान को विदेही अवस्था बोली जाती है, ऐसी जनक राजा की विदेही अवस्था प्रसिद्ध थी। इसलिए वो हमारे पुराण में जनक विदेही नाम से प्रसिद्ध है। तो वो उपाधि में रहते हुए भी, मतलब राजकाज में रहते हुए भी, वो तो आत्म स्वभाव में रहते थे। ऐसा आलम्बन में मेरे लिए कभी नहीं लूंगा ऐसा कहते हैं, ऐसे मेरी बुद्धि नहीं होती है, मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं है कि हम दूसरा ज्ञानी का अर्थ लेकर के हम भी व्यवसाय में लगे रहे। हमको तो छूटना है, जनक राजा के जनक राजा जाने, मेरे परिणाम व्यवसाय में लगते वो हमको पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बहुत अच्छा संकेत है इसके पीछे कि हमारे यहाँ जो पुराण या कथानुयोग है उसमें ज्ञानियों की बहुत सी बातें आती हैं। उसमें ऐसी ऐसी भी बात आती है कि महाज्ञानी होकर भी होकर के भी राज के तंत्र बड़े बड़े चलाते हैं और फिर भी वो आत्मसम्मान में रहते हैं। तो मुमुक्षु सच्चे होते हैं या ज्ञानी होते हैं तो उसका आधार नहीं लेता कभी, तो एक जानकारी का विषय है। ज्ञानी को पहचानने की बात है, वो बात अवलंबन लेने की नहीं है। जो जानने की है वो अवलंबन लेने की नहीं होती। अगर अवलंबन लिया तो शिथिल हो जाएगा, तो वो करने लायक नहीं है। इसमें से संकेत ऐसा निकलता है और खुद का परिणमन ऐसा है कि उसने पुराण पुराण तो खुद ने भी पढ़े थे लेकिन उसमें से तात्पर्य कैसा निकाला, ये देखने की बात है। हाँ, शिथिलता खुद शिथिलता में आ जाता है, अभिप्राय समेत आ जाता है, अभिप्राय की भूल खड़ी हो जाती है। कभी भी बुद्धि नहीं हो जाती ऐसे आलम्बन प्रति, कभी भी बुद्धि नहीं जाती, अभिप्राय ऐसा नहीं होता हमारा। जानते हैं सब कुछ, ऐसा अभिप्राय हमारा नहीं कभी होता। और पुराण में तो दूसरी भी बात आती है कि तीर्थंकर जैसे ने भी ग्रहता का या व्यवसाय का त्याग कर दिया, तो आलम्बन तो उसका ले रहे या उसका ले रहे, किसका ले, ये बात करेंगे। बहुत अच्छी बात किया है।